नियम सार कारण कार्य नियम लेक्चर नंबर 373 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमियोणगिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंशनसहाभम् गच्छामि नियमसारम् केवली सुद केवली बलिनम्
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियम सार नामक ग्रंथ है। उस पर पद्म प्रभ मलधारी देव ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो कारण कार्य नियम पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। इसमें से अभी अपनी छठी पुस्तक चल रही है और हम पृष्ठ संख्या 80 पर आ गए हैं। ये नया प्रवचन शुरू होता है, वहां से हम पढ़ेंगे। 246 का जो श्लोक है उस पर का प्रवचन चल रहा है। देखो 145वीं टीका, वो टीका में 246 नंबर का श्लोक है। अहीं पण अन्य वशनु स्वरूप कहूं छे। पहले में बात भगवान कहते कि तुम हमारा लक्ष्य करेगे तो भी ये परवश है, अन्य वश है, क्योंकि वो राग है। अब यहाँ कहते कि अपने द्रव्य गुण पर्याय के बारे में भी जो कुछ विकल्प चलेगा वो भी अन्य वश है। पेज नंबर 80 नया पैराग्राफ, नया जो प्रवचन है वहां से पढ़ेंगे। अहीं पण अन्य वशनु स्वरूप कहूं छे। आत्मा सिवाय परद्रव्यनी क्रियामा माने छे अने दयादान आदिमा धर्म माने छे ए बधा मिथ्या दृष्टि छे। द्रव्यलिंगधारी मुनि नग्न होय छे पण द्रव्यलिंगधारी छे अंदर धर्म नथी, अंदर समकित नथी, ऐसा जीव यहां लिया है। समकित विनानु नग्नपनु ए मुनिपनु नथी। ऐसा ही है, यानी बाहर कितने भी क्रियाएं करे उससे कुछ जल्दी ना आत्मा के नजदीक जाए या उसका अनुभव हो, ये बात नहीं है, क्योंकि मान्यता में कहीं ना कहीं कुछ खोट रह गई है।
नहीं, जैसे हमारे धारणा ज्ञान में ये आ गया है कि हाँ, पाप से वो माने शुभ अशुभ भाव ही है, उससे कोई धर्म होता नहीं।
हाँ,
फिर भी हमारी मान्यता में कहा ना कहा ये पढ़ाई है, इसलिए समझ जाते हैं।
मान्यता में ऐसा है क्योंकि अभी रुचि स्वसन्मुख की नहीं हुई है, या ट्राई भी करते फिर भी हुआ नहीं है, हम कहेंगे यानी उस पक्ष आ गया है उसका कि पढ़कर ये नक्की किया है कि नहीं ये सही है, परंतु उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे। सम्यक श्रद्धा तब तक नहीं कहेंगे जब अनुभव पूर्वक की प्रतीति होती, तब उसको प्रतीति और श्रद्धा कहेंगे। पालन करते हैं परंतु कभी कभी तो उनके पक्ष भी नहीं आया है। सम्यक्त का अर्थ तो ऐसा होता है एक्चुअली, जब करण लब्धि में चढ़ गया तो उसको एक्चुअली करना नियोग की अपेक्षा तब उसको सम्यक्त सन्मुख कहेंगे क्योंकि अभी नियम से होने वाला है, नियम से होने। प्रायोगिक लब्धि वाला तो अभव्य को भी होता है तो उसको हम सम्यक तो सन्मुख कहेंगे, तो अभव्य को भी सम्यक तो सन्मुख करना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ, यानी हाँ, हमने सही क्या है वो निर्णय तक चल रहे हम कि ये बात सही है, यही बात सही है। यानी अभी द्रव्यलिंगी में तो क्या हो रहा है वो तो अनुभव की बात ही नहीं करते हैं, वो राग की बात करते हैं, क्रियाओं में ही रचे पचे हैं, और उसी को मोक्ष मार्ग मानकर भी, यानी मान्यता में अभी मिथ्या तो पड़ा है उनका। हाँ, अभी पेज नंबर 80 पर बात चल रही है, 80 नया प्रवचन है, वहां से पढ़ रहे हैं।
पेज नंबर 80 फर्स्ट नया प्रवचन के फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे से एक दो लाइन।
हाँ देखो यहाँ क्या कहते हैं, द्रव्यलिंगी की बात देखी थी, वो अन्य वश क्यों है बता रहे कि द्रव्यलिंग धारी यानी वो तो जैसे शास्त्र में बताया है वैसे बराबर, ये पांच महाव्रत है समिति वो पालन जो क्रिया है वो क्रियाओं का पालन बरोबर कर रहा है, परंतु तो अभी भी मान्यता में कहीं खोट है। अंदर धर्म नति, क्योंकि अभी सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ है, आत्मा का अनुभव नहीं है और क्रिया में ही धर्म मान रहे हैं, ये बात है वहां पर। तो समकित विनानु नग्नपनु ए मुनिपनु नथी, ए द्रव्य लिंग धारी छे, और उसमें भी द्रव्य लिंग तब कहते हैं जब वो क्रिया जो है वो आगमोचित, हाँ जैसे निरतिचार उसका पालन हो, जैसे आगम में बताया है वैसा पूरे 28 मूल गुण निरतिचार पालते हैं, शिथिलाचार नहीं है तब उसको द्रव्यलिंग कहेंगे, नहीं तो द्रव्यलिंग भी नहीं कहेंगे, ये बात है। अब पहले में पहले जो भावलिंगी होते हैं, पहले द्रव्यलिंग तो बिल्कुल, हाँ यानी जिसको हम कहेंगे कि बराबर मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, व्रत भी पालेंगे और फिर तत्व निर्णय से और अंतरंग में स्थिरता द्वारा ही ऊपर के गुणस्थान हो गए, ऐसा द्रव्यलिंग पहले गुणस्थान में तो मिथ्या मान्यता है, पर जो चौथे गुणस्थान वाला है उसके भी वैराग्य अधिक हो गया और उसके मुनिपना यानी प्रकट होने वाला है, तो वो भी पहले में पहले बाह्य में द्रव्यलिंग अंगीकार करेगा, फिर उसके गुणस्थान चौथे से सातवें होगा। नहीं मान्य में यानी वो तो बाह्य क्रिया है, अभी मुझे वो स्टेज नहीं प्रकट हुई, उसको जानता है वो, बिल्कुल जानेगा, क्योंकि अपने में योग कैशाम की जो इतनी निराकुलता इतना आनंद अभी नहीं हुआ है, परंतु मार्ग यही है कि पहले बिल्कुल आचार्य के पास जाके मुनि दीक्षा अंगीकार या भगवान के पास जाके उनके सामने मुनि दीक्षा अंगीकार की जाती है, पालन करने यानी वो तत्काल वहां अंतर्मुख परिणाम में उनको चौथे से सातवां हो सकता है, यानी वो क्रिया करते करते बहुत लंबा काल बिताना पड़े ये भी बात नहीं है, यथा योग्य अभी जिसका जैसे शुद्धोपयोग में या तीन करण परिणाम होकर ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ जाता है। देखो ए द्रव्यलिंग धारी मुनि क्यारेक छ द्रव्यों में चित्त जोड़े छे, भगवाने कहेला छ द्रव्यों में चित्त लगावे छे, ये तो राग छे, ये कोई धर्म नथी। हेलमेन ये भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया वो तो छह द्रव्य सात तत्व है, जो कुछ है आगम के बारे में उसके उसमें उसने मन लगाए चित्त लगाए, छ द्रव्यो जे भगवाने कहा एमा पण जे चित्त लगावे छे ए परवश पराधीन दुखी छे, क्योंकि वो राग है अभी विकल्प की दशा है, आत्मा का अनुभव की दशा नहीं है वो, ए राग छे ने राग छे दुख छे परवश छे, इसलिए उसको अन्य वश या परवश कहा, एने निश्चय आवश्यक सत्य आवश्यक होता नथी, निश्चय आवश्यक तो अंतरंग में स्थिरता है तभी बताए जाते हैं। क्यारेक अभी क्यारेक क्या किया उसने, छ द्रव्य में चित्त जोड़े छे, अभी पहले द्रव्य की बात की, अब उसके गुणों की बात है, क्यारेक तेमना तेमना इतले द्रव्योना मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन गुणों में मन जोड़े छे, छ द्रव्यों में चेतन एक छे पांच अचेतन छे, एमा विचार ने मन लगावे ए पण पराधीन छे ए पण राग ने आधीन छे, केम के पराधीन थयो अने एक द्रव्य में त्रण भेद करीने विचार करे तो एने रागज थाय धर्म नथी थतो, क्योंकि वो ये द्रव्य है गुण है पर्याय है वो हर समय करते हैं, ये कौन से गुण का कार्य है, ये सब प्राथमिक भूमिका में ये सब बातें होगी, आचार्य भी सिखाएंगे ना शिष्यों को, परंतु अनुभव के काल में जब तक इसका विचार है तब तक वो विकल्प दशा ये कहना चाहते हैं। और यहाँ तो द्रव्यलिंगी मुनि लिए, उसके तो आत्मा को अनुभव है ही नहीं है, बस इसी में क्रियाओं में और ये जो पढ़ा है उसी के विचारों में अभी अटका है। हाँ तो कहते तेने राग छाए थी धर्म नथी थतो, भाई अत्यारे तो काई ठेकाना विनानु चाले छे, यानी वो बाह्य क्रिया भी वो ठेकाना वगैरह की है, बाहर ने लग्न क्रिया करे धर्म ए मुनि, इन्हें ऐसी मान्यता भी चल रही है। अही तो अजी समकीति पण नथी,
वो करने वाले की मान्यता तो है ही है, वैसा मानने वाले भी अनेक लोग हैं।
वही तो, क्योंकि समाज को ये तो अभ्यास नहीं है, कोई विचार नहीं है, कभी ऐसे उपदेश नहीं सुने हैं, सही क्या है गलत कहीं कुछ निर्णय नहीं है, और बस लौकिक में इतना रचा पचा है कि धर्म के नाम पर ऐसा कोई प्रसंग आता है तो पूरी समाज इकट्ठी होती तो ये भी चल जाता है। वहाँ पर मंदिरों में भी वो कुछ त्योहार आया, कोई दिवाली है, कोई दशरक्षण है, तो मंदिर में जाना, भगवान के नमस्कार करना, और मुनि के नाम पर कोई वहाँ आते हैं तो उसी को यानी वो जो कुछ कहेंगे वो धर्म ऐसा मानकर सुनने को चला जाता है, बस इतना है। या दर्शन करने से बस अपना कल्याण होगा, इतना जाके उनके सामने माथा टेका, हमने दर्शन किया, बस इतना है। जब कांजी स्वामी यहाँ आए थे ना क्रॉस मैदान में, तो हमारे भी ऐसे कोई पहचान वाले आए थे, हम दर्शन करने आए, मतलब दर्शन करने से कुछ नहीं मिलने वाला, उनको देखने से कुछ नहीं बात है, वो क्या बताते थे वो बराबर समझेंगे, उस पर निर्णय करके अपना कल्याण करेंगे, तो हमने उनको सुना या हमने वो, नहीं तो खाली उनको देखने से क्या होने वाला है, देखने से तो कोई ये तत्व समझने वाले नहीं है, पर लोग ऐसा ही मानते हैं महापुरुष है उसके दर्शन करने चले जाते हैं। अभी आपके यहाँ जो कोई तपस्या वगैरह चलती क्यों जाते हैं देखनो, उनका देह कितना दुबला है वो देखने जाते हैं क्या मानकर जाते हैं, नहीं कोई महान है उनको देखे तो सही दर्शन तो करे, पहले इधर उधर भागती थी ना, ये समय दृष्टि है वो समय दृष्टि, चलो दर्शन करने चले जाए, होता था कि नहीं ऐसा। हाँ देखो आगे तो कहते अहीं तो अजी समकीति पण नथी, मुनि पण तो क्या ही रह गयो, यानी मुनि की तो बात कुछ अलग है। समकीति छह द्रव्य में छह द्रव्य ना गुण में चित्त लगावे तो पण पराधीन नहीं, पराधीन मिथ्या दृष्टि छे। समकीति मिथ्या दृष्टि क्यों कहा, मुनिपनु तो क्या ही रह गयो, यानी मुनिपनु ने मुनि समकित मुनि क्या ही रह गयो, समकित यानी समकिति मुनिपनु तो और कुछ है। हाँ, इस तरह से वो समकिति शब्द उसमें आगे नहीं लेना, यहाँ लिखा ना जी तो समकिति पन नहीं मुनिपनु तो क्या ही रही हो, समकिति यानी बस एक शब्द बोल के उन्होंने वाक्य वहाँ पूर्ण किया, वो फुल स्टॉप देना यहाँ, फुल स्टॉप देना समकिति के बाद। अब यहाँ पर जो है छह द्रव्य में छह द्रव्य ना गुण में चित्त लगावे तो पण पराधीन मिथ्या दृष्टि छे, क्योंकि शुरुआत ही उन्होंने वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की बात उठाई थी, उसी की बात है, वो फुल स्टॉप दे दो उसमें, वो पहले वाक्य से लगते हुए समकिति का कोई संबंध होगा, समकिति ऐसा वहां बताए ना जी समकिति पण नथी मुनि पण तो क्या ही रहेगी समकिति, यानी सम्यक तो सहित मुनिपना तो और कहाँ रह गया। एमा धर्म माने यानी वो क्रियाएं कर रहे हैं, हमने शास्त्र का विचार कर रहे हैं, उसमें धर्म मानता है विकल्प में, ये धर्म छे ने मान्यता का दोष चल रहा है ना, मिथ्या दृष्टि है ये बात बता रहे। छह द्रव्य ना छह द्रव्य गुणना अने छह द्रव्य नी पर्याय ना पर्याय आवी जो तेमना अर्थ पर्यायो क्यारे के नी छह द्रव्य नी प्रदेशत्व गुण सिवाय अनंत गुण नी पर्याय नो विचार करे छे, उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। क्यारे एक व्यंजन पर्याय नो विचार करे छे, प्रदेशत्व गुण नो पर्याय आकार एनो विचार करे छे, परंतु त्रिकाण निरावरण नित्यानंद, ये स्वभाव की बात है। एमा चित्त लगावे ए कोई धर्म नथी। एक्चुअली एमा एटले ये द्रव्य गुण पर्याय मा, ये बीच वाला बोर्ड है उसको नहीं लेना, अभी पहले वाक्य की बात कंटिन्यूएशन में है, यानी द्रव्य गुण और पर्याय मा चित्त लगावे ए कोई धर्म नथी। छ द्रव्य, छ द्रव्य ना गुण ने, छ द्रव्य ने पर्याय, त्रणे मा चित्त लगावे धर्म नथी। फिर उन्होंने क्लियर किया उसको, जगत ने हजी तो सम्य दर्शन कोने केवू अने सम्य दर्शन केम उत्पन्न थाय छे एनी खबर नथी। अने मुनिपनु थई गयो, नग्नपनु थई लीधु, लई लीधु, मुनिपना विना मोक्ष थाय नहीं, पण कयु मुनिपनु। सम्य दर्शन मां पहला अंतर आत्माना आनंदनो अनुभव थाय छे। छ द्रव्यनीना गुण पर्यायनो विचार छोड़ीने, देखो पहले जाने बिना तो उसको आत्मा का अनुभव तो होगा नहीं। छह द्रव्य सात तत्व सब पूरा ही जो वस्तु का स्वरूप है तत्व जानेंगे, तत्व का निर्णय होगा, फिर स्वसन्मुखता से आत्मा अनुभव होगा। तो कहते उस समय विचार छोड़कर, ये बात है, छह द्रव्य ने इना गुण पर्याय नो विचार छोड़ी ने अंदर मां अतीन्द्रिय आनंद नो स्वाद आवे छे। उसके विचार ने वो विकल्प राग छूट गए हैं, उसका ज्ञान तो रहेगा ना, ज्ञान कैसे चला जाएगा। जान लिया है ये सभी वस्तु तत्व को, जानकर निर्णय में ले लिया है, तो ज्ञान के पर्याय में उतना ज्ञान तो हम चलता ही रहता है, पर यहाँ उसके विकल्प का निषेध है। इसलिए विचार छोड़ी ने विकल्प छोड़ी। अंदर मां अतीन्द्रिय आनंद नो स्वाद आवे छे। सम्य दर्शन प्रथम चौथे गुण स्थाने, हाँ एना तो ठेकाना नहीं, ने छ द्रव्य ना विचार गुण ने पर्याय नी धारा ने एना विचार करे, आत्मा सिवाय परद्रव्य नी बधी धारा ना विचार करे छे। अरे आत्मा मा पण द्रव्य गुण ने पर्याय त्रण भेद नो विचार करे छे, ए पण पराधीन छे धर्मी नहीं, क्योंकि उसी में अटका है ना, अभी राग है वो तो। परंतु त्रिकाण निरावरण, प्रभु आत्मा जे अंदर छे तो त्रिकाण निरावरण छे, अंदर चैतन्य मूर्ति आत्मा जे छे ए तो त्रिकाण निरावरण छे। देखो आवरण तो उस दिन पूछा ना, आवरण नहीं है ये तो, वो तो पर्याय में है। अभी हम ज्ञान आवरण दर्शन आवरण तो है ना, बारहवें गुणस्थान के अंत तक है, पर ये कैसा है त्रिकाण निरावरण। त्रिकाण निरावरण सर्वज्ञ स्वभाव होगा ना, वहां पर बाह्य में आवरण नष्ट होते हैं तो सर्वज्ञत्व प्रकट होता है, तो ये त्रिकाण निरावरण ने सर्वज्ञ शक्ति, वहां वो शक्ति सामर्थ्य भरपूर पड़ी है, अंदर परिपूर्ण है, सामर्थ्य परिपूर्ण है, उसमें कुछ नहीं करना है, उसको पूरा नहीं करना है, वो है पूरा, उसको जानना है और उसी को जानते रहना है, तो पर्याय में वो दशा प्रकट होगी। तो कहते चैतन्य मूर्ति आत्मा जे छे ए तो त्रिकाण निरावरण छे, नित्यानंद जेनु लक्षण छे, यानी वीतरागता सर्वज्ञता, वो तो जिसको कहते आनंद अतीन्द्रिय जो अनंत सुख, ये तो स्वभाव में भरा पड़ा है, क्योंकि वहां कोई कर्म नहीं है, वहां कोई आवरण नहीं है। यह लिखा ना जेमा अतीन्द्रिय आनंद नु नित्यानंद लक्षण छे, अंदर जे भगवान आत्मा नित्य आनंद अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति छे, यानी आनंद से ही आनंदमय है वो, इसलिए उसी की मूर्ति है। ये अतीन्द्रिय आनंद मा तो दृष्टि लगावता नथी, ये द्रव्यलिंगी की बात चल रही थी, अने त्रिकाणी निरावरण प्रभु एमा दृष्टि लगावता नथी, अने बाहर नी क्रिया पंच महाव्रत ने अठावीस मूल गुण ने द्रव्य गुण पर्याय ना विचार मा चित्त ने लगावे ए पराधीन छे। इन्हें स्वाधीन ऐसा जो निज तत्व है उसमें दृष्टि नहीं लगाते और बाकी इसी में क्रिया में और राग में ही रचे पचे रहते हैं, उसको पराधीन कहा। एने मुनि नथी कहता, अंदर छेके नहीं, मूल गाथा में से श्लोक में से निकाल निकाल कर बता रहे। नित्यानंद जेनु लक्षण प्रभु अंदर आत्मा वस्तु जे छे ए त्रिकाण निरावरण छे, नित्य आनंद लक्षण छे, अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय अमृत थी भरेलो छे, अने એવા નિજ કારણ સમયસર પોતાનો આત્મા નિજ કારણ સમયસર નામ એને એટલે ધ્રુવ નિત્યાનંદ ત્રિકાળી પરદ્રવ્યોનો પણ વિચાર નહીં અને પોતામાં દ્રવ્યગુણ પર્યાય ત્રણનો પણ વિચાર નહીં. પરદ્રવ્ય મેં ભગવાન હૈ ગુરુ હૈ અમારે તો ઉનકા ભી વિચાર નહીં હૈ ઓર યહાં તો દ્રવ્યગુણ પર્યાય સંબંધી ભી વિચાર વિકલ્પ નહીં હૈ. પોતાની એક સમયની પર્યાય તરફ પણ લક્ષ્ય નહીં. તો પૂરા એ લક્ષ્ય કિસમે કેન્દ્રિત હૈ તો ત્રિકાલ જો સ્વભાવ ભાવ. પેજ નંબર હૈ 81 નીચે સે ચૌથી લાઈન ત્રિકાળ નિરાવરણ નિત્યાનંદ ઉપર સમયસારના સ્વરૂપમાં વો સમયસાર એને વો કારણ સમયસાર બતાવ્યા થા હા નિત્યાનંદ ત્રિકાળ નિરાવરણ એવો અંદર ભગવાન આત્મા છે છે કે વાત હૈ વો કાયમ હૈ અંદર હૈ હૈ ઓર હૈ એમાં લીન સહજ જ્ઞાનાદિ શુદ્ધ ગુણ પર્યાયોના આધારભૂત જે સહજ જ્ઞાન ત્રિકાળી જ્ઞાન ત્રિકાળી આનંદ ત્રિકાળી શાંતિ ત્રિકાળી પ્રભુતા એવા ગુણના આધારભૂત નિજ આત્મતત્વ આહા હા ભગવાનના દર્શન કરવા કે ભગવાનની જાત્રા બાત્રા કરવી એ બધો શુભરાગ છે કાંઈ ધર્મ નથી ઝીણી વાત બહુ. પોતાનો પણ ત્રણ પ્રકારનો ભેદ કરીને વિચાર કરવો એ કાંઈ ધર્મ નથી. ક્યાં કહા વો શુભભાવ હૈ દ્રવ્ય ગુણ ઓર પર્યાય કા વિચાર કરના જો સાત તત્વ હૈ ઉસકે ભેદ કરના ઉસકા સ્વરૂપ અભી હમ જો સીખ રહે વો પ્રાથમિક ભૂમિકા મેં હોગા પણ ઉસકે વિચાર હૈ વો રાગ હૈ યે કહે રહે તબ તક અનુભવ નહીં હૈ. યહાં લિખા ના તીસરી લાઈન દ્રવ્ય ત્રિકાળી એના જ્ઞાનાદિ ગુણ અને પર્યાય એવા ત્રણ ભેદનો વિચાર કરવો એ પણ રાગ છે ધર્મ નથી તબ તક અનુભવ નહીં હૈ. સમકી દ્રષ્ટિ ધર્મ એને કહે છે પ્રથમ ચોથું ગુણસ્થાન સમ્યક મુનિપુણ તો આગી વાત એની તો આગે કી વાત પહેલે પહેલે તો સમ્યક દર્શન હો જાવેગા. ત્રિકાળી નિરાવરણ નિત્યાનંદ જેનું લક્ષણ છે એવા નિજ કારણ સમયસારના સ્વરૂપમાં લીન સહજ જ્ઞાનાદિ શુદ્ધ ગુણ પર્યાયોના આધારભૂત નિજ આત્મતત્વમાં ચિત્ત ક્યારેય જોડતો નથી. એ નિજ આત્મતત્વ કૈસે હૈ તો ઉસકે આધાર સે તો અનંત ગુણ રહેતે હૈ જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણ હૈ ઉસકે આધાર સે. દૂર અચ્છા આગે કી અને પ્રીવિયસ નહીં આગી વાત મુનિપુણો તો દૂર કી વાત એને દૂર કે લીએ આગી શબ્દ આતા હૈ ઠીક
નજીક ઓર આગી
નહીં યે કહેવત હૈ ના અભી દિલ્હી બહોત દૂર હૈ એને મુનિપુણ તો બહોત દૂર કી બાત હૈ. અભી નીચે હમ પઢ રહે થે નયા પેરેગ્રાફ યહાં સે ત્રિકાળી નિરાવરણ નિત્યાનંદ જેનું લક્ષણ છે એ હમને પઢા તા એવા નિજ કારણ સમયસારના સ્વરૂપમાં લીન સહજ જ્ઞાનાદિ શુદ્ધ ગુણ પર્યાયોના આધારભૂત નિજ આત્મતત્વમાં એને એ સબ નિજ આત્મતત્વ કા વર્ણન ક્યા તો ઉસમે ચિત્ત ક્યારે જોડતો નથી. અજ્ઞાની પોતાનો આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ અતિન્દ્રિય આનંદનો સાગર નાથ છે એમાં તો કદી ચિત્ત લગાવતો નથી અને ક્યાં કરતા હૈ દ્રવ્યગુણ પર્યાયમાં પરદ્રવ્યમાં દેવગુરુ શાસ્ત્રની ભક્તિ આદિમાં ચિત્ત લગાવે છે तो एने धर्म थतो नथी। और उसमें चित्त लगाना उसको आसान भी लगता है, भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति कहो, ये जो कहे बहुत जैसे कहते उसमें रस ले लेकर करता है, ये कहना चाहते हैं। पन कहते वो उसको धर्म नहीं होता है, वो राग है, बंध का कारण है। गजब बात छे, मानवू कठन पड़े, हजी मान्यता ना ठेकाना नथी, त्या मुनिपनू क्या थी आयु। ऊपर यही बात बताई, अभी समकित नहीं है तो मुनिपना बहुत दूर की बात है। अने मुनिपना विना मोक्ष थाय नहीं, मुनिपनू पन समकित विना थतु नथी, अने समकित पोताना त्रिकाणी द्रव्यना आश्रय विना थतु नथी। एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कितना क्लियर है ना, कि मुनिपना विना मोक्ष नहीं, अने मुनिपनू पन समकित विना थतु नथी। और समकित कैसे प्राप्त करेंगे भैया, अभी कौन देगा? तो समकित पोताना त्रिकाणी द्रव्यना आश्रय विना थतु नथी। कोई देने वाला, लेने वाला, कोई किसी का करने वाला नहीं है, बिल्कुल स्वाधीन है सब कुछ। ए समकित, कोई बाहर ना द्रव्य गुण पर्याय नो विचार करवा थी के स्वद्रव्य नो विचार करवा थी। क्या कहा? दूसरे के तो द्रव्य गुण पर्याय छोड़ो, पर मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये जो विकल्प है उससे भी, उस विचार से भी के परमात्मा ने भक्ति विचार ने यात्रा करवा थी, बिल्कुल समकित थतु नथी। ए तो राग छे, भक्ति नो राग छे, हा हा छे। और कोई मानते कि नहीं नहीं, बाहर से व्रत वगैरह करने से समकित जल्दी हो जाएगा। अब ऐसी प्ररूपना भी करते हैं कि गृहस्थों को तो शुद्ध उपयोग नहीं होता है, तो पहले मुनिपना अंगीकार करो, बाद में उनको सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये उल्टी प्ररूपना चल रही ना अभी सब। शुद्ध गुण पर्याय ना आधारभूत पवित्र गुण अने पवित्र पर्याय, आनंद गुण अने आनंद दशा, एना आधारभूत आत्मतत्व, एमा क्यारे चित्त नथी जोड़तो, एमा अंतर आनंद मा क्यारे चित्त नथी जोड़तो, ते तपोधन ने पण, ए तपोधन, मुनि को तपोधन कहते हैं। मुनि नग्न दिगंबर होय तो पण, यानी वो बाहर में इतनी उच्च उन्होंने शुभ भाव या ये सब दशा धारण की है, बाहर से उनके केवल वो क्रियाएं अवलंबन कर रहे, क्रियाओं धारण कर ले, पर अंतर में मुनिपना है ही नहीं है, इसलिए कहते हैं उनको भी। वो तो ऊपर बताए ना, इना कारणेज, क्यों कारणे यानी चित्त क्यारे जोड़तो नथी, इसलिए ते तपोधन ने पण, अर्थात पर विकल्पों ने वश थतो होवाना कारणेज अन्य वश कहवामां आव्यो छे। मुनि होके भी उनको अन्य वश क्यों कहा? क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं है और बस इसी क्रियाओं में और द्रव्य गुण पर्याय आदि के विचार में ही चित्त को लगाते हैं। ए परवश छे धर्म नथी, ए अधर्म ने वश थयो छे। क्या कहा? आखरी बात छे, आखरी बात छे, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने वो पूरा भूसा भर दिया ना पहले से, सुन के रखा है, कहे मान के रखा है, अब उसको थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है तो पहले में पहले सुनने को राजी नहीं होता। सच कहूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ अलग सी बातें कहाँ से निकाली, इतने सब मानते आए, इतने सब कह रहे हैं, वो झूठे और आप सच्चे। हाँ, अधर्म शब्द तो छोड़ गए क्योंकि हम कर रहे हो अधर्म,
अधर्म सबसे भारी लगता
है, यानी वही तो धर्म नहीं कहने तो कोई चिंता नहीं, वो अधर्म वो कहते हैं कि उनको धर्म नहीं है ऐसा कहने से कोई चिंता नहीं है, पर अगर धर्म नहीं पर अधर्म है कहते तो बहु एकदम झटका लगता है, अंदर से भारी लगता है। हाँ,
लेकिन
देखो अधर्म ने वश थयो छे। अब कौन सुनेगा ऐसे कि मुनि मुनि है बिल्कुल, जिसको कहते निरतिचार सब पालन कर रहे है, द्रव्य गुण पर्याय की बात कहते बारम्बार वो स्वाध्याय इसी में लग रहे है और फिर कहते वो परवश है अधर्म कर रहे है। अब भक्तों को उनके उनको कुछ लगना है वो लगने दो उनके भक्तों को ही कैसा लगेगा पहले में पहले। वही यानी पूरे बाहर से तो परफेक्ट ऐसा धर्मी जैसा दिखता है लगता है, क्योंकि सब कुछ क्रियाएं तो हो रही है जैसे वैसे मुनि के जैसे, और फिर भी अंतरंग में आनंद का अनुभव नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो कहते कि वो तो अभी परवश है। परवश यानी अधर्म ने वश छे। हाँ वो बात एक्सेप्ट नहीं होती अधर्म कहने से, है ना। द्रव्य गुण पर्याय त्रण नो विचार करवाथी अने छ द्रव्य नो विचार करवाथी अने परमात्मा नी भक्ति यात्रा आदि करवाथी राग थाय छे, परवश थाय छे, दुखी थाय छे अने तेमा धर्म माने तो मिथ्या दृष्टि थाय छे। हाँ अभी बात छे, जो सब धर्म मानकर किया था उसको सब वो कह रहे कि तो मान्यता का निषेध है, यह क्रियाएं या जो कुछ है वो छोड़ देने गए, अभी तो इसका भी पता नहीं है और वो भी छोड़ दिया, ये भी गया और वो भी गया। हाँ ये तो पूरे अशुभ में ये दुर्गति में ही चला जाएगा ये कहते हैं। मान्यता की बात है तो मान्यता सुधारनी है, ये का तो क्रिया करता है का तो छोड़ना चाहता है, यानी अभी भी उसने वो उपदेश बराबर ग्रहण नहीं किया है ये कहना है। नहीं छोड़ना, वो मोक्षमार्ग प्रकाशक में बताए ना कि तब तक तो इसको अंगीकार करो परंतु मान्यता ऐसी रखो कि ये तो धर्म नहीं है, ये तो बंध का कारण है। हाँ दिखाइए, वहां तो प्रशस्त राग रूप प्रवृत्ति करो ऐसा कहा है। हाँ मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है ना, क्योंकि लोगों की यही बात है, ये तो उससे कुछ नहीं बंधत है, अभी छोड़ देंगे तो कहाँ, अभी ठिकाना नहीं है कुछ, अभी तत्व मालूम नहीं है, तत्व निर्णय का ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, और ये छोड़ना चाहता है अभी, यानी उपदेश तो उपदेश तो आगे बढ़ने के लिए आता है। पेज नंबर याद है क्या? नहीं 260 होगा शायद। आस मोक्ष सातवें अधिकार में है ना, नहीं 226 में होगा शायद। ठीक है, हाँ देखो 226 पर है।
कौन सा अधिकार है?
सातवां अधिकार, आश्रो तत्व का अन्यथा रूप। देखो क्या कहना है, तो ऊपर का एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ मैं, पेज नंबर 226। हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, परंतु इसने मारने के परिणाम किए तो वो पाप बांध है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, परिणाम क्या है? बचाने के, परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं, यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य मानता है। पुण्य और पाप उसके अपने परिणामों के होते हैं, उसके परिणामों के कारण जैसे वो पुण्य या पाप बनते हैं, और सामने वाले की दशा तो उसके अपने स्वयं के। हाँ इस प्रकार ये दोनों हेय है। कौन से दोनों हेय है? हाँ बचाने का भाव, शुभ अशुभ दोनों है ये। आश्रय की बात है ना यहाँ पर, अपना अभी विषय चल रहा है, सात तत्वों का है ये उपाधि, अपना विषय चल रहा है, आप थी ना कल। हाँ तो ये दोनों क्या है? हेय है, दोनों ने दोनों भाव है, ये ने छोड़ने लायक है, ये मान्यता हेय है क्या गेय है क्या उपाधि, ये मान्यता के भेद है। जानने के लिए सात तत्वों का ज्ञान आवश्यक है, उसकी बात नहीं, ये किस रूप से मानना है उसकी बात चल रही। जहां वितराग होकर पूर्ण वितरागी हो जावे और ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध है, तब जाके निर्बंध होगा, क्योंकि वहां ना शुभ भाव हो गए ना अशुभ भाव हो गए। सो उपादेय है, यानी जो मोक्ष तत्व हो गया वो उपादेय है। सो ऐसी दशा न हो तब तक, यानी बंध रहित ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, उपदेश दे रहे। उपदेश हमें हमेशा कुछ करने धरने का होता है, ये उपदेश की भाषा है। परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो, देखो एक प्रवर्तन और श्रद्धांत दो भेद किए। प्रवृत्ति ने हमारा जो क्रियाएं जो चलती है उसकी बात है, यहाँ तो क्रियाएं बाह्य शरीर की क्रिया भी नहीं ली, राग के लिए। राग में प्रवर्तन करो, कौन से? शुभ राग में प्रवर्तन करो। प्रशस्त राग यानी शुभ राग, शुभ राग यानी कौन से? देव गुरु शास्त्र के बारे में, स्वाध्याय के बारे में। दे तब तक स्वाध्याय करो कहेंगे हम, कब तक? जब तक पूर्ण इसी दशा न हो, क्योंकि मुनिराज भी तो स्वाध्याय करेंगे, पर उनका तो आत्मज्ञान सही चल रहा है इसलिए उनको परवश नहीं कहा। यहाँ क्या कहते हैं? जब तक ऐसी दशा न हो, यानी बंध रहित जब तक नहीं होते हैं, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो, यानी मान्यता ये रखो, यह भी बंध का कारण है और हे यानी छोड़ने लायक है, छूटेगा जब जाके छूटेगा। रागी दशा है तो राग हुए बिना रहेगा नहीं, तो वहां तो उपदेश में क्या कहेंगे? पाप राग करो ऐसा थोड़े ही करेंगे। उपदेश तो देखो, राग तो आने योग्य आता है, ये तो सिद्धांत हुआ, परंतु सामने को उपदेश देना है तो क्या? रोज मंदिर में जाओ, रोज पूजन करो, स्वाध्याय में बैठो, क्या कहते हैं तत्व का, ये करो की बात होगी उसमें। तो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, कब तक? पूर्ण वितराग नहीं होते तब तक। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि होता है। श्रद्धान में जाने ने श्रद्धान में माने, कैसे श्रद्धान करे कि यही मोक्ष मार्ग है, ये राग ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा अगर हम मानते हैं तो मिथ्यात्व है, क्योंकि वो मान्यता का दोष है। अब यहाँ आते, अपने पेज नंबर 82 पर बात चल रही थी। यहाँ लिखा था ना नीचे से दूसरे पैराग्राफ लास्ट लाइन, तेमा धर्म माने तो मिथ्या दृष्टि था। यह ना यात्रा का निषेध है ना पूजा का निषेध है, जिसके जिस भूमिका में वैसे भाव आएंगे, परंतु उसको धर्म मानता है तो मिथ्यात्व है। हाँ, आत्मा सिवाय यानी अपने को छोड़कर, आत्मा किसको कहा? यह त्रिकाली जो कारण निज कारण समय सार कहा था ना, तो आत्मा सिवाय, आत्मा ने निज आत्मा सिवाय कोई पण पदार्थ, बीजो पदार्थ चाहे तो भगवान हो, चाहे तो अन्न पानी आहार औषध आदि चीज हो, तो पैसा हो, संपत्ति हो, हीरा हो, माणिक हो, जो कुछ हो, एना ऊपर लक्ष्य रेवा थी राग उत्पन्न थाय छे। क्यों? अभी ये रागी द्वेषी अवस्था है, ए पराधीन छे, ए आत्मा पराधीन छे, धर्मी न थी। तो धर्मी न थी के क्या कहेंगे उसको? पराधीन अधर्म करे छे, तो पोतानो जे त्रिकाणीय आनंद स्वरूप लक्षण भगवान, एमा क्यारेक चित्त जोड़तो नथी। यानी ऐसा नहीं कि समकीति अब शब्दोपयोग भी नहीं तो इसमें चित्त, ऐसा भी नहीं, इसको तो हुआ ही नहीं सम्यक, ऐसा जीव लिया है। मिथ्या तो है, उसकी मान्यता भी खोटी है, और ऐसी खोटी मान्यता सहित कुछ वो तो, और कहते नहीं नहीं मैं तो ध्यान में बैठा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा विचार करते जा रहे, और उसी को धर्म मान के बैठा है। तो पराधीन अधर्म करे छे, यहाँ लिखा ना, एमा क्यारे चित्त जोड़तो नथी। मुनिर्त धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, अनंत वार मुनि थयो। देखो कैसा ग्रेवेक में, अभी ग्रेवेक में तो द्रव्य लिंगे जिसका परफेक्ट होगा वो जा सकता है, मिथ्या तो अवस्था में कौन जाएगा? अगर तो द्रव्य लिंगे हो गए तो जाएंगे। अब उसमें भी कितनी कितनी कंडीशन होगी, ऊपर के तीन उत्कृष्ट सहनन वाला होना चाहिए, यानी पांचवे, हमारे पांचवे काल का कोई भी वहां नहीं जाएगा, क्योंकि तीन ऊपर के सहनन हो गए तो ही ग्रेवे आदि में जा सकते हैं। एक बात, फिर वो शुक्ल लेशा के ऐसे परिणाम में वहां की आयु बंधनी चाहिए, ये दूसरी बात होती है। क्योंकि द्रव्यलिंगी होवे परंतु द्रव्यलिंग के भी अभी गुणस्थान तो मिथ्यात्व तो है, तो छह लेशाएं कुछ भी हो सकती उनकी, तो वहां की आयु बांधने योग्य परिणाम में तब तो बंधेगी ना। गति तो चारों बंध रहा है क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। अब आयु बंध के अवसर में वो ग्रेवेक की आयु बंधनी चाहिए, वो सब उसके साथ वो प्रकृतियां बंधेगी, यानी वो कितनी रेयर कंडीशन होगी। फिर भी ऐसी बात अनंत बार हुई है।
पहले में पहले तो ये सोचो कि ऐसा कोई जीव जो मनुष्य पर्याय में जन्म लेवे,
वो पहले में पहले वो दुर्लभ।
हाँ, मनुष्य पर्याय में जन्म लेवे और जैन में जन्म लेवे,
बराबर,
और जैन दर्शन के प्रति उसको आस्था होवे और फिर मुनि व्रत लेवे,
बराबर।
अभी हम भी जैन कुल में जन्मे हैं, हम और आप, कितने जन को मुनि बनने की इच्छा है, ख्याल में है ना। ऐसा करते हुए उसने मुनिपना लिया है लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं किया है,
यहाँ पर भी
एक नहीं अनंत बार किया है। मुनिव्रत दार अनंत बार ग्रैवे को उपजाए, और आगे लिखते पैन आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कहने का मतलब ये है कि मुनि मनुष्य पना मिलना दुर्लभ है, उसमें जैन कुल में इंटरेस्ट रहना, जैन कुल में जन्मना, जैन अभी आपने यहाँ कितने जैन है और कितना अभ्यास करते हैं, इसका स्व को जानने का कितना प्रयत्न करते हैं, यानी ये इतनी रेयर पॉसिबिलिटी बताई है कि उसका कोई हिसाब नहीं।
और भरत क्षेत्र में तो चौथे काल में जाएंगे कोई द्रव्यलिंगी वहाँ, हाँ विदेह क्षेत्र में हमेशा रहेंगे, परंतु त्रस पर्याय में रहने का काल ही 2000 सागर है, और उसमें मनुष्यपना मिलना दुर्लभ ही है ना, और लगातार मिले तो 48 की बात आती है, परंतु वो भी दुर्लभ में दुर्लभ बातें आती है सब। और यह ऐसा भी होता है कि त्रस में आया 2000 सागर तर एक भी मनुष्य भवन न मिले, ये हो सकता है, हो सकता है ना, एक भी न मिले। तो तिरंच देव और नर की तीन ही भव कर, बार बार तिरंच में से देव में गया, फिर तिरंच में आया, कभी नरक में गया, फिर तिरंच में आया, फिर देव में गया, इस तरह से हो सकता है। लगातार तिरंच में जो कुछ यथा योग्य काल भटकने का उतना भी भटक सकता है, परंतु मनुष्य न हो ये बन सकता है, तिरंच न हो ये नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ हो सकते है, यानी ऐसे कितनी बातें हो सकती है, यानी देव तिरंच और मनुष्य के भोग करता रहे ऐसे भी हो सकता है, देव मनुष्य और नारकी के भोग करता ये भी हो सकता है, यानी देव का एक भी भाव नहीं किया ये भी हो सकता है, नारकी का एक भी भाव नहीं किया ये भी हो सकता है, मनुष्य का एक भी नहीं किया ये भी हो सकता है, पर तिरंच के तो होगे ही होगे। हाँ, यानी इसमें इतनी सूक्ष्मता है, उसमें तो मनुष्यपना की दुर्लभता ही ख्याल में आती है। मनुष्य यानी मनुष्यपना दुर्लभ है, उसमें मुनि योग्य परिणाम कितने जीवों को हो रहे हैं, ये बात बताने चाहते हैं। और ऐसा भी अनंत बारे ने हम जिसको कहते हैं अनादि से इस संसार में रूल रहा है, उसकी अनंतता काल इतना बड़ा है वो ख्याल में आता है हमें। और ग्रेवेक में अनंत बारे ने, ग्रेवेक में से फिर मनुष्य और फिर ग्रेवेक हुआ, ऐसा लगातार तो हो नहीं सकता, उसके भी लिमिट होते हैं। जितने ऊपर के स्वर्ग है उतने उसके बार वहां जन्म लेने के बार और घटते चले जाते हैं। और हमने तो भव परावर्तन में ऐसा भी देखा है, ग्रेवेक का मिनिमम भव, फिर एक समय अधिक, क्रम से हो दो समय अधिक, तीन समय अधिक, ऐसे पूरे 31 सागर तक के, अभी पूरा एक सागर की कवर करने में कितना अनंत काल लगेगा। और ऐसे भव परावर्तन भी अनंतों बार किए हैं, खाली ग्रेवेक के वो एट रैंडम अनंत किए ऐसा भी नहीं है। लगातार है कि बीच में एट रैंडम किए होगी उसको मत गिनो, एक एक समय से बढ़ते हुए ग्रेवेक के भाव किए तब तब उसको गिनो। अभी उसके दो ग्रेवेक के भाव के बीच में ही अनंत काल चला जाए, कि एक लाइन है परंतु उसी में इतनी गहराई है कि उसकी उस काल के अनंतता का पता नहीं चलता है। फिर इतना किया ना तो क्या फायदा, धर्म नहीं हुआ उसको भी। अभी हम भी यहाँ धर्म के नाम पर क्या सुनते हैं या क्या उपदेश सर्वत्र चल रहा है, ये क्रिया करो वो क्रिया करो, ये व्रत करो इसके आगे के व्रत करो, ये अभी ये कर रहे अभी उसके आगे चलो, यानी वो शुद्ध की या शुद्ध भाव की बात ही नहीं कहीं आती।
इससे धर्म नहीं हुआ तो उसका फल तो कुछ मिला होगा कि नहीं?
हाँ, फल तो है ना, संसार में भटक रहे और क्या मिला, अनंत काल से वही करते आ रहे। सच्चा मुनिपना होता तो शीघ्र मोक्ष चले जाते। देखो भावलिंगी मुनिपना 32 से ज्यादा बार नहीं लेना पड़ता, वो भी मैक्सिमम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में। बिल्कुल जाएगी, उसको संयम के कांडक भी कहते हैं ना, यानी इतने बार भी जरूरत नहीं कि इतने बार लेंगे। सम्यक दृष्टि है, परंतु देखो ऐसा है ना, 32 कैसे जाएंगे कि गिर गए कोई, मिथ्या तो में चले गए। सम्यक्त्व असंख्यात बार होता है और छूटता है, पल्ले के असंख्यात वे भाग बार, और ऑर्डिनरी वेदक नहीं, औषमिक सम्यक्त्व भी इतने बार हो सकता है, और दो औषमिक के बीच में पल्ले के असंख्यात वे भाग मिनिमम काल तो जाना ही चाहिए, मैक्सिमम चला जावे कोई बात नहीं। हाँ, असंख्यात वर्ष दो औषमिक के बीच में, हाँ वेदक सम्यक्त्व अंतर्मूर्त में हो सकता है। वो प्रथमानुयोग है, और उसके पहले के भवों में क्या क्या किया होगा कि नहीं, उन्होंने ऐसे थोड़े मुनि हुए चले गए। अभी ऐसा है ना, अभी चौथा काल शुरू हुआ था, ऐसे ही जो यहाँ उत्पन्न हुए कि जो अभी, क्योंकि पहले कितने बार वो सम्यक तो भी प्राप्त किया होगा, छुट भी गया होगा, मुनिपना भी लिया होगा, कभी पांचों गुणस्थान में भी चले गए होंगे, कभी उपशम श्रेणी चढ़ के भी उतरे होंगे, फिर अभी यहाँ उत्पन्न हुए हैं, उनकी बात की उन्होंने। प्रथमानुयोग में ऐसा है कि यहाँ चलो उनको वैराग्य आया, मुनिपना लिए, मोक्ष चले गए।
ये कथाओं में सारी बातें शॉर्ट में बताते हैं। हाँ देखो, जैसे अभी की बात हम बताते हैं आपको, पिक्चर बनते हैं कल आज और कल, इसमें तीन पीढ़ी बताते हैं। वो तीन बीड़ी कब खाना खाए, कब सोए, कब दंत मंजन किया, कुछ नहीं बताते, वो फटाफट 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 एक एक के बाद। वैसे ये प्रथमान योग में डिटेल बात नहीं बताते, बस उसने मुनिपद लिया, मोक्ष चले गए। अब बीच में और क्या क्या वो बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको अन्य बातें बतानी
है। पहले के पूर्व भव में कितने बार वो मिथ्या तो में गए होंगे, क्या क्या किया होगा, हाँ वो नहीं बताते ना। वो हमारी कथा कोई अन्य चल रही है उसके साथ साथ। इसलिए प्रथमानुयोग बार बार पढ़ना चाहिए कि अपने को भी विचार आवे ना, पर केवल बाहर से वो दीक्षा लेने का भी विचार आने से कुछ फायदा नहीं है। छोड़ने का भाव आने के पहले मैं सबसे छूटा हूँ पहले ये नक्की करना है। मान्यता की बात कोई नहीं, क्योंकि वो देखा देखे ऐसे होता है ना, उन्होंने छोड़ा तो मैं भी छोड़ू, कुछ ये छोड़ू वो छोड़ू वो छोड़ू। यहाँ नीचे से चौथी लाइन है ना, अनंत बार मुनि थयो नग्न दिगंबर पंच महाव्रत धारी, अनंत बार थयो, हजारों राणी छोड़ीने, करोड़ों रुपयानी पेदाश छोड़ीने, दुकान छोड़ीने मुनि थयो पण मिथ्या दृष्टि रहीने, ए रागनी क्रियामा धर्म मानना। भूल कहाँ हुई, वो राग है उसको, राग की क्रिया, राग तो आया पंच महाव्रत पालू, और वो पालने में वो क्रिया में ही धर्म मान लिया। ए मुनि तो नथी समकीति पण नथी, क्योंकि अभी मान्यता का ही दोष चल रहा है। आवी वात छे, जगत थी ऊंधी छे, पेज नंबर 83, पोतानो आत्मा जे शुद्ध गुण पर्याय नो आधार हो, शुद्ध गुण पर्याय नो विचार एम नहीं, क्या कहा, यानी उसके बारे में हम हमेशा कहते हैं ये आम लाया, अरे कितना पीला है कितना मीठा है, वो विचार नहीं, उसका अनुभव। हाँ, शुद्ध पवित्र अनंत गुण ने अनंत पर्याय नो आधार जे आत्मा द्रव्य वस्तु एक रूप चीज एमा चित्त लगावतो नथी अने एने छोड़ी ने बीजे चित्त लगावे छे तो एने अधर्म थाय छे धर्म नथी थतो। बस इतनी बात। चित्त लगाना है उसमें बिल्कुल पर्याय एकाकार एकाग्र हो जाना, उसको चित्त लगाना कहेंगे। ये ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ ये अपने आप को समझा रहे विचार यानी विकल्प जल्प जिसको कहेंगे उसका निषेध है। मुमुक्षु आ तो प्रमाण नु द्रव्य थयु शुद्ध गुण पर्याय। उत्तर नहीं प्रमाण प्रमाण बात नहीं अहीं तो एक रूप वस्तु द्रव्यनी दृष्टि निश्चय सम्यक छे यानी द्रव्य गुण पर्याय सब मिलकर अभेद वो बात यहाँ नहीं है कहते। पर्याय पर्याय नो विचार पण नहीं एकलु त्रिकाणु द्रव्य त्रिकाणी द्रव्य जिसको हम स्वभाव भाव कहते हैं ध्रुव एक सदृश भाव अनादि अनंत नित्य कायम रहने वाला अंश किधु नहीं शुद्ध गुण पर्यायोना आधारभूत निज आत्मद्रव्य पर्याय नहीं। शू कहूँ आखिरी बात छे भाई वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा एनो मार्ग कोई अलौकिक छे। अत्यारे तो लोको मां गड़बड़ थई गई छे व्रत तप ने भक्ति ने पूजा ने यात्राए धर्म 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 छे। अरे ये तो राग छे विकार छे धर्म नथी। पहले नक्की करना है वो छोड़ने की बात नहीं चल रही है। आपको यात्रा का भाव आता है तो यात्रा का आता है तो हम कहेंगे नहीं जाओ यात्रा, परंतु ये धर्म नहीं हो रहा है ये शुभ भाव है ये तो नक्की कर सकते हैं ना। यहाँ तो कहे छे के शुद्ध गुण पर्याय नहीं शुद्ध गुण पर्याय ना आधारभूत तत्व। क्या कहा? अगर शुद्ध गुण पर्याय कहेंगे तो भेद हो जाएगा वो प्रमाण का। इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा ये प्रमाण का द्रव्य हो गया द्रव्य भी है गुण भी है पर्याय भी है तो कहते उसकी बात नहीं है उसका आधारभूत तत्व की बात है। समझानो काय शुद्ध गुण पर्याय ना आधारभूत एक रूप शब्द डाला ना यहाँ पर निज आत्म तत्व भगवान पर नहीं निज आत्म तत्व पोतानु अंतर तत्व सच्चिदानंद सत चित और आनंद। सत का अर्थ क्या देखा था हमने सत्ता अस्तित्ववान पदार्थ सत चित चैतन्यमय और आनंदमय सच्चिदानंद प्रभु शुद्ध आनंद ने शुद्ध ज्ञान नो गंज एटले पिंड उसी से बनी हुई वस्तु है ये ज्ञान और आनंद से ही चित यानी चैतन्य ज्ञान दर्शन अतीन्द्रिय आनंद नो पिंड आत्मा अंदर छे। अतीन्द्रिय आनंद विषय नो आनंद है तो झेर छे विषय ने पांच इंद्रियों के जो गेय है उसको ये जीव वो मानता है मैं इनको भोग रहा हूँ और मुझे इनसे आनंद आ रहा है तो कहते ये तो झेर छे। पांच इंद्रिय ना विषय विषय समझते ना हाँ जो इंद्रियों के द्वारा जिनको जाना जाता है वो इंद्रियों के विषय है परंतु ये क्या करके उसको ये मेरे भोग्य वस्तु है ऐसा समझ रहा है इसको तो पांच इंद्रिय ना विषय एनु जे सुख के कल्पना छे ए तो काड़ू झेर छे। क्या कहा? ये सुख नहीं है सुख की कल्पना है ये कल्पना करके बैठा है कि मुझे इसमें से सुख मिलता है। अरे उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है उसमें से सुख कैसे मिलेगा? ये तो काला नाग नु झेर छे क्योंकि उसमें सुख की कल्पना कर ली ये कल्पना जो है खोटी है ये मिथ्यात्व है और वो झेर है। अहियाँ तो शुद्ध गुण ने पर्याय ए नहीं पन शुद्ध गुण पर्याय नो आधार आत्मा छे एम कहे छे। समझानु काय? देखो कितनी उसमें जिसको कहेंगे बिल्कुल चोखवट जिसको कहेंगे क्योंकि ऐसा पूरा वाक्य पढ़ते तो क्या समझ में आता है। यहाँ लिखा ना हमने 82 पेज पर वो बोल्ड में लिखा था नए पैराग्राफ में त्रिकाण निरावर नित्यानंद जैन लक्षण जो पढ़ लिया हमने पर उसमें कितनी बारीकाई के साथ बता रहे कि यहाँ जो शुद्ध गुण पर्याय की बात है उसकी बात नहीं हो रही उसका आधारभूत जो है वो आत्म तत्व है। देखो यहाँ लिखा, अभी हमने पढ़ा ना, समझानो काय एना गुण ने पर्याय अने द्रव्य त्रण नो विचार करवो ए पराधीन छे, आश्रव छे, राग छे। राग है इसलिए उसको आश्रव में डाला। आ तो शुद्ध गुण पर्याय नो आधार एक रूप जे वस्तु, अब ये कौन से तत्व में आएगी? ये है ना शुद्ध गुण पर्याय नो आधार एक रूप वस्तु, सात तत्व में से कौन सी? जीव तत्व। जीव तत्व वो उसके द्रव्य गुण पर्याय के विचार वो आश्रव तत्व है, नहीं समझे? पर या तो जिसमें लीन होना है वो कौन है? जीव तत्व। हाँ उसकी बात है, उसको आधार एक रूप जे वस्तु बताया। आव सांभळ्युं न होय एटले कठन पड़े, मार्ग तो आवो छे। देखो एक ही मार्ग है, अभी उसी को कठिन 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 मानकर उसको सुनने को तैयार नहीं है, वो प्रकट कब करेगा? अत्यारे तो बधी गड़बड़ थई गई छे, बधा संप्रदाय में आ करू आ करू आ करू, बधा ने वो दिगंबरों में पण यही बात चल रही, बार हो हा सब यही चलती है। व्रत पाड़वा ने व्रत पाड़वा ए धर्म छे, ऐसी प्ररूपना बाहर हो रही है। व्रत तो आश्रव छे, आश्रव ये दुख छे, दुख ये धर्म नथी अधर्म छे। अभी सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि सुनने में एलर्जी आती तो फिर आगे बात कैसी हो जाएगी। आगी छे आगी, हाँ अभी यहीं रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अरविंद।